मेरे अत्यंत आत्मीय युवा मित्रों नमस्कार। आज 27 दिसंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं ऐश्वर्या नुवाल भीलवाड़ा राजस्थान से, हरिओम शरण आपका गांव है मून छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश से, मुकेश कुमार मौर्य आपका गांव है करमनपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश से और राकेश कुमार राजभर आप हैं गोरखपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से। तो ऐश्वर्या हरिओम मुकेश और राकेश आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं सुनामी पर कुछ बातें करूंगा लेकिन आइए इससे पहले कुछ न्यूज को देख लेते हैं और आज न्यूज की संख्या है भी काफी पर्याप्त। पहली खबर आपने सुनी कि आज से संसद में जो मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक पेश किया गया है उस पर बहस शुरू होगी, पेश किया जाएगा और उस पर बहस शुरू होगी। दरअसल यह मुस्लिम महिला अधिकार संरक्षण विधेयक का संबंध वो तीन तलाक मुख्यतः तीन तलाक वाले नियम से ही है कि आपको मालूम है कि मुस्लिमों में ये एक तरह से कह लीजिए कि उनका पर्सनल लॉ है कि अगर कोई पति तीन बार अपनी पत्नी को तलाक 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 कह देता है तो फिर उनका तलाक हो जाता है। और इसको लेकर के आपको ये भी ज्ञात होगा कि सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस परंपरा को या कह लीजिए पर्सनल लॉ को गलत ठहराया था। स्वतंत्रता के जो स्वतंत्रता का हमारा जो मूल अधिकार है और समानता का अधिकार है उसके विरुद्ध घोषित करते हुए सरकार से कहा था कि वो इस पर कानून बनाए, फिर सरकार आर्डिनेंस लेकर के आई थी। और आप ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी अध्यादेश आता है तो 6 महीने के अंदर यदि उसे संसद से पारित करके कानून में तब्दील नहीं किया गया तो वो अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो अब चूंकि अध्यादेश का वक्त पूरा होना है तो संसद में अब वो विधेयक लाया गया है और उस विधेयक पर अब बहस होगी। मैं चाहूंगा कि आप इस बहस पर भी अगर नजर रख सकें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उससे आपको एक तरह से समीक्षा के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मिलेंगे। बहस में जो लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं वो वाकई में गौर करने लायक होते हैं, ध्यान देने लायक होती हैं। एक न्यूज आपने और भी उसी के तहत सुनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सांसद हैं उनको व्हिप जारी किया है। व्हिप जारी किया है का मतलब है कि सभी सांसदों को यह आदेश दिया गया है कि जब इस पर बहस हो फिर मतदान हो, खासकर मतदान हो, उस समय प्रत्येक सांसद सदन में उपस्थित रहेगा, गैरहाजिर नहीं रह सकता। तो एक प्रकार से ये पार्टी का दिया गया आदेश होता है और यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो पार्टी उसके खिलाफ कोई भी स्टेप ले सकती है, कोई भी कार्यवाही कर सकती है। राइट फ्रेंड्स, तो अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अखबारों में इसकी डिटेल्स भी आएंगी तो थोड़ा सा पढ़िएगा उस डिटेल्स को कि कौन कौन क्या क्या विचार व्यक्त कर रहा है। भले ही व्यक्ति के नाम आपको मालूम न रहे लेकिन तथ्य अगर कोई जोरदार है तो वो आपके ध्यान में रहना चाहिए, बल्कि बेहतर होगा कि आप उसे नोट भी कर लें। इसके बाद आपने एक खबर पढ़ी होगी जो एक सूचना के तहत कह लीजिए कि थोड़ा सा मायने रखती है और वो ये कि राजवल्लभ यादव जो राष्ट्रीय जनता दल हैं उनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के सदस्य हैं, न्यायालय ने उनको नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अपराधी ठहराया है और जब न्यायालय ने अपराधी ठहरा दिया तो अब उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसे खत्म कर दिया गया है। ये एक कानून बनाया गया है और उस कानून के तहत यह है कि अगर कोई अभियुक्त है तब तो वो सांसद या विधायक रह सकता है। अभियुक्त का मतलब है कि उस पर केस चल रहा है, लेकिन अगर इस तरह के मामलों में उसे अपराधी ठहरा दिया गया है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि राजनीति को कैसे अपराधीकरण से बचाया जाए उसके तहत यह एक व्यवस्था है और उसके ही तहत की गई यह कार्यवाही है। तो एक सूचना के तौर पर आपको जब भी इस तरह के किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो आप इस नई घटना की चर्चा उसमें कर सकते हैं। एक सूचना आपने और सुनी होगी न्यूज में कि आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको मालूम है कि आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो राज्य बने थे, तो दोनों का संयुक्त अभी तक उच्च न्यायालय था। तो अब आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने अमरावती में काम करना शुरू कर दिया है और यह हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय है। 25वां, यहां आप ध्यान रखिएगा कि राज्य तो हमारे पास ज्यादा है लेकिन न्यायालय ये 25वां है। उसका कारण है कि कुछ राज्यों के संयुक्त न्यायालय काम करते हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब, उनका संयुक्त है। तो इस तरीके से न्यायालयों की संख्या राज्यों की संख्या से थोड़ी कम है। मित्रों, एक पहली ही जो खबर थी वो खासकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लेकर के थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये खासकर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं इनकी जांच करने वाली एक विशेष एजेंसी स्थापित की गई है हमारे देश ने और ये अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में आप अलग से कुछ न कुछ जरूर पढ़ लें, इस पर आपकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यह एजेंसी लगातार खबरों में होती है। चूंकि मुख्य विषय में आज मैं सुनामी ले रहा हूं इसलिए इस पर बात नहीं कर रहा हूं। अखबारों में आपने एक खबर पढ़ी होगी और वो ये कि जो आरबीआई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वह अपने पास रिजर्व में कितना पैसा रख सकता है इसकी रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष होंगे बिमल जालान जी, जो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर रह चुके हैं और कुछ दूसरे उसके मेंबर्स होंगे और पहली बैठक के 3 महीने के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसका संदर्भ यह है कि आपको ध्यान होगा कि लगातार सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में एक बहस और तनाव की स्थिति बनी हुई थी और अखबारों में ये आ रहा था उसके पीछे कारण था उसका फंड। रिजर्व बैंक के पास लगभग कहा जाता है कि 9,60,000 करोड़ रुपए का फंड है, कैश है। सरकार चाहती थी कि उसमें से कुछ फंड उसे मिल जाए। रिजर्व बैंक इस फंड को देने के लिए तैयार नहीं था और इसी तनाव की वजह से यह माना जाता है कि जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद फिर नए गवर्नर आए और अब उस फंड के साथ क्या किया जाए, कैसा किया जाए, क्या होना चाहिए, इस बात के रिकमेंडेशन के लिए एक कमेटी बना दी गई है। यहां मैं एक तथ्य के रूप में आपको बताना चाहूंगा कि सामान्यतया ये देखा गया है कि जो दूसरे बड़े देश हैं उनका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहां का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल बैंक है ना, तो इसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, जो मुख्य बैंक है कह लीजिए, उनकी जितनी भी संपत्ति होती है टोटल, उस संपत्ति का 14% वो एक कैश के रूप में रखते हैं, अपने फंड के रूप में रखते हैं 14%। भारत में इसका प्रतिशत 28% है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो कुल संपत्ति है उसका 28% है 9.6 लाख करोड़ रुपए। तो इस पर अब यह समिति विचार करके सरकार को अपनी सिफारिश सौंपेगी, तो यह आपकी जानकारी में होनी चाहिए। मित्रों, आज के करंट कंटेंट में आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, वो है भारतीय गरीबी से संबंधित विरोधाभास। भारतीय गरीबी से संबंधित विरोधाभास, पॉवर्टी आपके सिलेबस में बकायदे दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में आप देखिएगा, तो उसके क्या विरोधाभास है, कैसे उसमें कंट्राडिक्शंस दिखाई देते हैं, तो आपकी समीक्षात्मक शक्ति को विकसित करने के लिए यह बहुत मददगार होगा। फ्रेंड्स, आइए अब मुख्य विषय के तहत मैं सुनामी की चर्चा करता हूं और आप बकायदे अगर आप अपने मेंस फर्स्ट पेपर के सिलेबस को देखेंगे तो आपको सुनामी उसमें अलग से मेंशन किया हुआ मिलेगा। सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, तो मान सकते हैं आपकी सुनामी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चूंकि इंडोनेशिया में इस एक साल में दो बार आ चुका है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब आप नक्शे में इंडोनेशिया को देखेंगे, आपको देखना ही चाहिए, तो आप पाएंगे कि इंडोनेशिया में आए हुए इस सुनामी का प्रभाव भारत पर पड़ना संभावित हो सकता है। और इससे पहले 2004 में जो सुनामी आई थी, आपको मालूम है कि उसका अंडमान निकोबार द्वीप पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा था। मैं 2004 या 2005 की बात है। और उसका कारण यह है कि ये जो सुनामी है बेसिकली ज्यादातर ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आता है, इंडोनेशिया हिंद महासागर में आप देखिए। और अगर सुनामी इंडोनेशिया में आता है तो आप पाएंगे कि अंडमान निकोबार तो बिल्कुल उसके पास पास में ही है, लेकिन ये सुनने से पता नहीं लगेगा, ये नक्शे पर देखने से पता लगेगा। मलेशिया, सिंगापुर, वहीं पर आपको इंडोनेशिया मिलेगा, वहीं जावा सुमात्रा मिलेगा और उसके पास में अंडमान निकोबार आपको मिल जाएगा। तो बहुत थोड़ी सी दूरी दोनों के बीच में है। तो बट नेचुरल है कि जब समुद्र की तेज लहरें उठ रही हैं तो वे तेज लहर उठ करके हमारे हिंद महासागर के तटों पर भी पहुंच सकती हैं और फिर पूरा दक्षिण भारत का जो समुद्री तट है, जो मद्रास वगैरह है, वे तक उससे प्रभावित हो सकते हैं। और अगर बहुत बड़ी सुनामी आई तो वो होती भी है। दोस्तों, ये सुनामी है क्या? बेसिकली कुछ नहीं, ये समुद्री लहरें हैं। ये जापानी शब्द है और जापान में जो इसका अर्थ है, सु का मतलब होता है समुद्र तट और नामी का मतलब होता है लहरें। समुद्र तट में उठने वाली लहरें, वे लहरें जो कुछ जरूरत से ज्यादा ही उठ जाती हैं, बस वो हो गई सुनामी। सामान्यतः यह माना जाता है कि जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं उन क्षेत्रों में सुनामी की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जिन क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। देखिए, भूकंप कहां सबसे ज्यादा आते हैं, बाकायदे ज्योग्राफी में यह आपका चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि भूकंप ज्वालामुखी तो आपको पढ़ना ही है। और आप अगर आप मेंस के कंसॉल्ट पेपर उठा करके देखेंगे तो वहां आपको बकायदे ये मेंशन किया हुआ भी मिलेगा। तो एक कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, रिंग का मतलब है एक गोला, गोलाकार का होता है रिंग, फायर यानी अग्नि, इसको हिंदी में कहा जाता है अग्नि वलय, कुछ लोग इसको अग्निमंडल भी लिख देते हैं। तो पूरे के पूरे इस हिंद महासागर वाले क्षेत्र में और प्रशांत क्षेत्र में भी एक गोल घेरा सा बना हुआ है जो बेसिकली भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। और उसका कारण यह होता है कि धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में भी पढ़ना चाहिए। और मैं अपने क्लास स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि मैंने इन प्लेट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराते हैं तो उससे भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। अब आप देखिए कि होगा क्या कि जब भूकंप आएगा या ज्वालामुखी की घटनाएं होंगी तो जो समुद्र का पानी है, मैं बहुत ही सामान्य तरीके से आपको ये बात बता रहा हूं, तो जो समुद्र का पानी है उनमें हलचल होगी। टेक्टोनिक प्लेट टकराई, जबरदस्त रूप से टकरा गई, तो उनके टकराने से जो पानी की सतह है आप ये कह लीजिए कि ऊपर उठ गई। जब तो दो चीज टकराएगी तो उसके ऊपर की चीज ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ गई तो पानी की लहरें ऊपर उठ गई, जब ऊपर उठ गई तो सीधी सी बात है कि लहरों की ऊंचाई बढ़ गई, और जब लहरों की ऊंचाई बढ़ गई तो पानी कहां जाएगा, तटों को पार करके जमीन वाले हिस्से में फैल जाएगा। यही हुआ। अभी जो इंडोनेशिया में भूकंप आया है वो करेला और नीम चढ़ा हो गया। चलिए ठीक है, ज्वालामुखी के कारण समुद्र की लहरें ऊपर उठने लगी, वो तो हुआ ही, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन पूर्णिमा भी था और आपको मालूम है कि पूर्णिमा के दिन जो ज्वार और भाटा की प्रक्रिया है, समुद्र के पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया है, वो तेज होती है, समुद्र की लहरों को ऊपर उठा देती है। तो एक तो ज्वालामुखी के कारण लहरें ऊपर उठ गई और दूसरा पूर्णिमा के कारण उन लहरों की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ गई। तो नतीजा यह हुआ कि संकट और अधिक बढ़ गया। तो मित्रों, ये सुनामी के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। बेहतर होगा कि आप किताबों से सुनामी की अच्छे तरीके से तैयारी करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चूंकि इस बार इंडोनेशिया में आया है, भारत के इंडोनेशिया से बहुत अच्छे संबंध है, न्यूज में आप सुन भी रहे होंगे कि किस तरह से भारत ने अपना दुख व्यक्त किया है इस घटना के प्रति और हर संभव सहायता देने की भी बात कही है। तो बट नेचुरल है कि फिर हमारे मेंस के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। फ्रेंड, मैं कुछ बातें आपसे अंत में ये शेयर करना चाह रहा हूं कि देखिए, अभी नीति आयोग ने इसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स में बड़ी हलचल है, बड़ी बेचैनी सी है। नीति आयोग ने अपनी तरफ से कहा है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो अधिकतम सीमा है जनरल कैटेगरी के लिए, वो 32 से घटा करके 27 कर देनी चाहिए। देखिए, नीति आयोग ने केवल एक रिकमेंडेशन दिया है ना, और ये उसका काम है कि नीतिगत वो अपनी सिफारिशें करें, सरकार उसे माने नहीं माने ये सरकार के ऊपर है। लेकिन खासकर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन प्रशासनिक मामलों में भी, प्रशासनिक मामलों में कह लीजिए कि रिकमेंडेशन करने वाली कोई ऐसी अथॉरिटी एजेंसी नहीं है, है ना। उसके लिए तो सरकार बकायदे यूपीएससी की एक अलग से आयोग बैठाती है सिविल सर्विस के बारे में रिकमेंड करने के लिए, और उस पर विचार किया जाता है। तो ये उन्होंने, चूंकि उन्हें सब विषयों पर अपना कुछ, अपनी कुछ न कुछ सिफारिशें देनी होती है, उसके तहत दे दी गई है। तो इसको लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं है। और वैसे भी अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार का स्टेटमेंट आ ही गया है कि नहीं, उसकी ऐसी कोई अभी इच्छा या योजना नहीं है कि वो अधिकतम आयु सीमा को घटाएगी। इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के अपने तैयारी में लगे रहें, उम्र फिलहाल तो कम से कम घटने नहीं जा रही है। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से तीन दोस्तों के नाम हैं, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, मनीषा मीना और श्रेया पटेल गुजरात से। आप तीनों का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।